कैंटीन हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। चम्मचों की खनक, प्लेटों के टकराने की आवाज़, कहीं जोर से हंसी, कहीं मोबाइल पर झुके चेहरे, हर कोई अपने ही छोटे से संसार में उलझा हुआ था। कोई आने वाले एग्जाम की बात कर रहा था, कोई नए ट्रेंड की, कोई बस टाइम पास कर रहा था। लेकिन उस पूरे चहल पहल के बीच आर्यन जैसे किसी और ही दुनिया में बैठा था। उसके सामने रखी ट्रे लगभग वैसी ही पड़ी थी जैसी उसने ली थी। पराठा ठंडा हो चुका था, सब्जी को छुआ तक नहीं गया था। कॉफी का कप उसके सामने रखा था, भाप कप की उड़ चुकी थी और कॉफी ठंडी होकर एक कड़वाहट छोड़ चुकी थी। लेकिन आर्यन को न भूख का होश था न स्वाद का। उसकी नजरें टेबल पर जमी थीं, लेकिन दिमाग सुबह के उस डाइनिंग टेबल पर अटका हुआ था। वही धूप, वही नाश्ते की खुशबू, वही हल्की सी हंसी, और फिर शावर की आवाज आ रही थी। अदिति की वो आवाज जैसे किसी नुकीली चीज की तरह उसके कानों में धस गई थी। आर्यन ने अनजाने में उंगलियां भींच ली, नाखून हथेली में गड़ गए, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। नहीं, नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, उसने भीतर ही भीतर सिर हिलाया। श्यामली, इस तरह नहीं। उसका सीना जैसे अंदर से जलने लगा, ऐसा लगा मानो किसी ने भीतर आग लगा दी हो, धीमी लगातार जलने वाली आग। नहीं श्यामली, तुम बार बार पापा के पास क्यों जा रही हो, उसने मन ही मन कहा। क्यों? भीड़ में बैठे बैठे भी उसे लग रहा था जैसे हर सांस भारी हो रही हो, जैसे फेफड़ों में हवा कम पड़ रही हो। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सीने का बोझ कम नहीं हुआ। मुझे लगा था, मुझे और अदिति को साथ देखकर तुम वापस मेरे पास आओगी। उसकी पलकों के पीछे पुरानी तस्वीरें तैरने लगीं, वो बातें, वो नज़दीकियाँ, वो वादे जो कभी जोर से नहीं बोले गए थे लेकिन महसूस किए गए थे। मुझे लगा था तुम्हें एहसास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हर दिन, हर सुबह, हर छोटी सी बात उसे यही दिखा रही थी कि श्यामली अब किसी और की दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। उसकी हंसी अब किसी और के साथ जुड़ गई थी, उसकी चिंता, उसका सुकून, उसकी चुप्पी, सब कुछ। और वो कोई और, उसका अपना पिता था। ये एहसास ही सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला था। आर्यन ने कुर्सी से पीठ टिकाई और आंखें बंद कर लीं। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे पसलियों से बाहर निकल आने को हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं टूट रहा हूं। भीड़ के बीच बैठा वो लड़का भीतर ही भीतर चिल्ला रहा था, रो रहा था, लड़ रहा था, लेकिन बाहर से बस चुप था। उसी वक्त आर्यन, एक जानी पहचानी आवाज। उसने आंखें खोली, सामने विशाल खड़ा था, हाथ में ट्रे थी, चेहरे पर वही सीधा साधा भाव, लेकिन आंखों में वो समझ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ऐसी समझ जो बिना कहे बहुत कुछ पढ़ लेती है। तुम ठीक हो, विशाल ने कुर्सी खींचते हुए पूछा। आर्यन ने तुरंत नजरें फेर ली, जैसे नजर मिलते ही सब खुल जाएगा। हाँ, बस नींद कम ली थी तो उसकी वजह से। झूठ था, और दोनों जानते थे। विशाल कुछ पल चुप रहा, उसने ट्रे रखी, कॉफी का एक घूंट लिया, फिर बहुत धीरे से बोला, मैं जानता हूं। आर्यन का शरीर जैसे सख्त हो गया। क्या, क्या जानते हो? उसकी आवाज में सतर्कता थी, डर भी। विशाल ने उसकी तरफ झुककर आवाज नीची रखते हुए कहा कि तुम मामा मामी के बीच बढ़ती नजदीकियों से परेशान हो। आर्यन का दिल जैसे एक पल को रुक गया, उसने झट से सिर उठाया। ऐसा नहीं है, आवाज कुछ ज्यादा तेज हो गई थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कैंटीन में हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। विशाल ने शांत स्वर में कहा, आर्यन घबराओ मत, फिर बिना घुमाए सीधी बात, मैं सब जान चुका हूं। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे दोस्त से पता चला, विशाल ने साफ कहा, कि कुछ वक्त पहले तुम और श्यामली एक दूसरे के बहुत करीब थे। आर्यन की उंगलियां कांप गईं, उसने कप को कसकर पकड़ लिया। विशाल, प्लीज, उसकी आवाज टूट गई, ये सब मत कहो। वो थोड़ा आगे झुका, अगर किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। विशाल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोला, मैं कोई तमाशा नहीं बना रहा। उसने कुछ पल रुककर फिर पूछा, अगर तुम्हें ये सब गलत लगता है तो तुम श्यामली को भूल क्यों नहीं जाते? आर्यन कुछ कह ही नहीं पाया, उसके होंठ खुले फिर बंद। आंखों में उलझन थी, गुस्सा था, दर्द था, सब कुछ। मुश्किल है, उसने आखिरकार धीमे से कहा, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में महीनों की बेचैनी, रातों की नींद और अनकहे सवाल छुपे थे। विशाल ने सिर हिलाया, तो फिर, उसकी आवाज और गंभीर हो गई, अदिति से शादी क्यों की? आर्यन की नजरें टेबल पर जम गईं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच ये था कि
उसने शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो तैयार था, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि वो भागना चाहता था, खुद से, अपने एहसासों से, शामली से। लेकिन शादी ने उसे मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे और जकड़ लिया। वो कुछ कह पाता उससे पहले, क्या बात है, एक हल्की सी जुटीली आवाज। दोनों ने एक साथ सिर उठाया। अदिति सामने खड़ी थी, हाथ में जूस का गिलास, चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान, लेकिन आंखें आज कुछ ज्यादा देख रही थीं। दोनों भाइयों में इतनी सीरियस बातें? उसने मजाकिया लहजे में पूछा। मुझे भी बताओ। आर्यन और विशाल दोनों एक पल को चुप हो गए। कैंटीन की सारी आवाजें जैसे उस टेबल से दूर हो गई हों। आर्यन ने अदिति की तरफ देखा। उसकी मुस्कान के पीछे वही सुबह की बेफिक्री थी, वही बातें, वही लहजा, और उसे लगा जैसे उसका दिल फिर से कसने लगा हो। कुछ नहीं, उसने जबरदस्ती सामान्य आवाज में कहा, बस कॉलेज की बातें। अदिति ने उसकी आंखों में झांका, सच में? फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, या फिर घर की? विशाल ने बीच में कहा, अदिति बैठो ना। अदिति कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें आर्यन से हट ही नहीं रही थीं। उसे कुछ महसूस हो रहा था, कुछ ठीक नहीं है। तुम ठीक नहीं लग रहे, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, मैं ठीक हूं। झूठ। और इस बार अदिति भी समझ गई। कैंटीन का शोर फिर से कानों में लौट आया, लेकिन उस टेबल पर बैठे तीनों के बीच एक अनकही खामोशी पसर चुकी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सवाल थे, डर थे और आने वाले तूफान की आहट भी। आर्यन जानता था ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला, और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी।